मेरे युवा दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री के प्रश्नों के जो मूल आधार होते हैं उन पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। प्री के प्रश्नों के मूल आधार, जब मैं कह रहा हूं प्रश्नों के मूल आधार, तो इसका मतलब है कि जब आप प्री के प्रश्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सॉल्व करने के आधार क्या क्या होने चाहिए, यानी कि सॉल्व करते समय वो कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जो आपके दिमाग में कौंधने चाहिए, और फिर जब आप उनका इस्तेमाल करते हुए उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। दरअसल होता क्या है, होता यह है कि प्री एग्जामिनेशन की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनका प्रिपरेशन का जो अधिकांश हिस्सा होता है, अधिकांश का मोर देन 90% जो भाग होता है वो केवल अध्ययन तक सीमित होता है। स्टडी स्टडी एंड स्टडी, सेकेंड पार्ट वो प्रैक्टिस का ले लेते हैं। जो 10-15% जो बचता है उसमें उन्हें लगता है कि यदि वो खूब प्रैक्टिस करेंगे तो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। ये जो दोनों आधार हैं ये गलत नहीं है, याद रखिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आधार गलत नहीं है, ये तो आपको करने ही चाहिए। लेकिन यहां जो मेरा जोर है वो इस बात पर है कि ये दोनों आधार अपने आप में संपूर्ण नहीं है, सब कुछ नहीं है, इसी से बात नहीं बनेगी। जो भी आपके टॉपर्स होते हैं और खासकर जो फर्स्ट पोजिशन पे आते हैं, जो फर्स्ट रैंक के होते हैं, उनके आप देखिए कि यूट्यूब पर कहीं आपको वीडियो मिल जाएंगे, कहीं आजकल तो बकायदे इंस्टाग्राम वगैरह पर उनके रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इंटरव्यूज मिल जाएंगे, वो क्या कहते हैं। हर एक ने ये बात कही है, प्रतिशत सबके अलग अलग हो सकते हैं, कि कम से कम 30-40% प्रश्न प्री के ऐसे होते ही होते हैं जहां आपकी पढ़ाई काम नहीं आ सकती, आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व किए बिना बात नहीं बनेगी। क्योंकि बाकी जो 50-60% है उसमें पढ़ाई का रोल तो सबसे ज्यादा है, लेकिन सब तो बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसमें से सब बन जाए तो बात खत्म हो गई। आपका स्कोर ज्यादा 50% अगर हो जाता है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसमें से आप सबको नहीं बना सकते। तो ये जो 30-40% जो दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं इन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को एक बहुत ही विनम्र सूचना देना चाहूंगा। जी हाँ, विनम्र सूचना यह है कि जोश टॉक पर मेरे कुछ लेक्चर्स आ रहे हैं। अभी कल एक मेरा टॉक रिलीज हुआ है जोश टॉक प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगा कि यदि आपके लिए संभव हो सके, आप समय निकाल सके, तो प्लीज इस टॉक को जरूर सुने। इसमें आपको प्रिपरेशन के जो दूसरे अंग हो सकते हैं, जो दूसरे भाग हो सकते हैं, जो दूसरे तरीके हो सकते हैं, वे जानने को मिलेंगे। इससे ठीक लगभग 3 सप्ताह पहले एक और टॉक रिलीज हुआ है जो उस टॉक प्लेटफॉर्म पर भी, मैं चाहूंगा कि आप उसे भी सुने। इन दोनों को जब आप सुनेंगे तब शायद आपको वो डायमेंशन दिखाई देगा जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है। वहां से फिर आप बहुत सारे ऐसे तथ्य निकाल सकेंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर के कि नहीं, ये तो मैंने कर लिया है लेकिन यह मुझे और करना चाहिए। चलिए, अभी हो सकता है कि उसके लिए वक्त नहीं हो, मैं नहीं चाह रहा हूं कि अभी आप अपने सिस्टम को चेंज करें, थोड़ा बहुत अगर बदल सकते हैं तो हो सकता है आपको उसका लाभ मिल जाए। लेकिन यदि आप आगे भी अपने प्रिपरेशन को जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों टॉक आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। प्लीज इनके लिए यदि आप समय निकाल सकें तो जरूर निकालें। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे आधार पर। फिलहाल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने स्टडी की है, जो इसको लेकर के जो भी रिसर्च किए हैं या जो मेरा अपना अनुभव भी रहा है, इन सबको मिलाते हुए मोटे तौर पर, संपूर्णता के साथ नहीं लेकिन मोटे तौर पर, जिससे आपका काम चल जाएगा, मैंने 5 आधार आइडेंटिफाई किए हैं। 5 मूल आधार, राइट। ये 5 मूल आधार क्या है, इसमें से डेफिनेटली 1-2 आधार आप जानते हैं, आप 3 आधार भी जान सकते हैं, लेकिन यदि हम सभी आधार को जान लें, या यूं कह लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आधारों को जान लें, बेसिस को समझ लें, तो क्या हर्ज है। क्योंकि ये जो कंपटीशन है आप जानते हैं कि कितना नेक टू नेक फाइट वाला कंपटीशन है। पता लगा 0.1% के लिए आप चूक जाते हैं, और केवल ऐसा नहीं कि प्री के लिए चूक जाते हैं, हो सकता है कि फिर पूरी जिंदगी भर के लिए चूक जाते हैं, हु नोज। तो जो 5 आधार मैंने आइडेंटिफाई किए हैं दोस्तों, पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगा। उसमें एक है ऑब्जर्वेशन। सामान्य तौर पर स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन को शामिल नहीं करते हैं। अनजाने में अगर कोई प्रश्न ऑब्जर्वेशन के आधार पर सॉल्व हो रहा है तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब उनके दिमाग में ऑब्जर्वेशन जैसे कोई आधार नहीं होता है कि नहीं, मुझे ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल करना है, राइट। ऑब्जर्वेशन, ये पहला आधार है। जो दूसरा आधार है वह है अनुभव, एक्सपीरियंस। इसके साथ भी वही बात है, क्योंकि स्टूडेंट का सारा जोर किताबों पर होता है, नोट्स पर होता है, लिखित सामग्री पर होता है, तो अपने अनुभवों को दरकिनार करते जाता है। जो अनुभव मिलते हैं वो आपको जीवन से मिलते हैं, आपको परिवार से मिलते हैं, आपको समाज से मिलते हैं, समस्याओं के समाधान से मिलते हैं, आसपास के वातावरण से मिलते हैं। अनुभव, तो अनुभव तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो आप अनुभव कर रहे हैं वो सतर्कता पूर्ण अनुभव नहीं है। मतलब आप इन अनुभव को सिर्फ इसलिए अनुभव नहीं कर रहे हैं कि नहीं मेरी ये काम आएगा। अपने आप जो हो रहा है वो रहा है, हो रहा है जो हो रहा है। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि चूंकि सतर्कता के साथ आपने अनुभव को अपने अंदर शामिल नहीं किया है, तो जरूरत पड़ने पर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। वो आपके खजाने में है, लेकिन वो आप यूं मान करके चले कि फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि 6 साल से पहले आप इस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जब इस्तेमाल करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपको तो अभी जरूरत है उन अनुभवों की। तो दोस्तों, ये सेविंग बैंक अकाउंट की तरह तब आपकी सेवा कर सकते हैं जब आप बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ अपने जीवन में इन अनुभवों को शामिल करें। तो ये दूसरा था अनुभव। तीसरा है फ्रेंड्स अध्ययन, स्टडी। वो आप कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो आप स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी का पैटर्न क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट का जो पैटर्न होता है वो रटने का पैटर्न होता है। रटने का पैटर्न यहाँ काम नहीं करता। मैं ये नहीं कहता हूं कि रटना बिल्कुल शून्य कर देता है आपको। कुछ प्रश्न रटने के आधार पर आपके बन जाते हैं, लेकिन जितने प्रश्न रटने के आधार पर बनते हैं उससे आपका बेड़ा पार नहीं लगेगा। ये मुश्किल है। आपकी मदद तो वो करेंगे लेकिन आपको सफल नहीं बना सकेंगे। तो ये तीसरा जो आधार था अध्ययन, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसमें लगातार लगे ही हुए हैं। तो बस यहां मैं इतना ही एड ऑन करना चाहूंगा कि प्लीज आप समझने की कोशिश करें, टॉपिक्स को समझें। उसका कारण यह है कि जो 4 विकल्प दिए जाते हैं, उन 4 विकल्पों में जो आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, उसे आप केवल अध्ययन के दम पर नहीं सुलझा सकते। वहां फिर समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि सब्जेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग है तब उन 4ों में से जो बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है आप उसे पकड़ सकेंगे, नहीं तो वहां फिर थोड़े से भ्रम में ये है या वो है, वो होगा या ये होगा, बस वहीं आप फंस जाएंगे। और देखिए, आपको तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। वहां भ्रम में रह करके सोचने विचारने का समय आपके पास है ही कहां। वहां तो सब मामला फटाफट 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 का है। ये तो सच पूछे तो 20 ओवर क्रिकेट मैच से भी ज्यादा फास्ट क्रिकेट मैच है। सोचने के लिए समय ही नहीं है। इसके बाद जो चौथा है दोस्तों, वो है तर्क, लॉजिक। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप यदि तर्क का इस्तेमाल करें तो बड़े आराम से आप उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यदि आप सिर्फ अध्ययन पर डिपेंड रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तर्क क्या है? तर्क यह है कि जो आपने अध्ययन किया है, यहां तक कि जब आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके अनुभव भी शामिल हो जाते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन मैं इन सबको शामिल करके इसे जटिल नहीं बनाना चाह रहा हूं। तर्क का मतलब है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जब आप उनके इक्वेशंस तैयार करते हैं, अच्छा ये है तो ऐसा होता होगा, वो है तो ऐसा होता होगा, नहीं ये है तो ये हुआ होगा, फिर आप ये हुआ होगा, ये होता होगा, यहां तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि तर्क का इस्तेमाल करके आप इस उत्तर तक न पहुंचे, ये न कह सके कि नहीं यही होगा, लेकिन यह हुआ होगा, यह हो सकता है, यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वह तब संभव होगा जब आप तर्क का इस्तेमाल करना जानते हो। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और यदि प्रिपरेशन करने के दौरान आप विषय को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो कैसे विषय को समझेंगे? विषय को समझने का तरीका क्या है? तर्क, लॉजिक। जब आप लॉजिकल तरीके से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वह टॉपिक तर्क संगत तरीके से आपके दिमाग में समा जाता है, बैठ जाता है, और फिर यहां आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जो 5वां और आखिरी जो आधार है वह है अनुमान, या यूं कह लीजिए, इसी में मैंने शामिल कर लिया है एहसास। जब आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो पहले तो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। और याद रखिए कि जब आप अनुमान लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वह अनुमान विशुद्ध रूप से हवा में आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे भी दिमाग काम कर रहा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग जो है ना, ये अद्भुत यंत्र है। पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें याद आने लगती हैं, कौन कौन से दृश्य आंखों के सामने दिमाग में उभरने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। और फिर आपको लगता है यार ये सही होना चाहिए, फिर आप थोड़े सा रुकते हैं, थोड़ा सा अंदर से हिलते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो फिर 1/3 मार्क्स इसके कट जाएंगे, माइनस मार्किंग है। तो फिर उसी समय आपको कुछ एहसास सा होता है, ऐसा नहीं यार ये तो सही होगा। याद रखिए कि जैसे ही अनुमान के बारे में आपके मन में भ्रम है और उसके बाद जैसे ही अनुभव उभरता है आप उसे निशान लगा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सही होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं या कहना भी चाहूंगा कि अगर अनुमान के बाद एहसास आपके अंदर से उभरा तो मान करके चलिए कि उसके सही होने की संभावना more than 75% हो जाएगी। और देखिए ये खेल तो है, अगर आप सोचेंगे कि आपकी तरफ एक भी गोल न हो तो आप गोल बचाने में ही लगे रहेंगे, गोल मार नहीं सकेंगे। और इत्तफाकन यदि अपोजिट टीम ने एक भी गोल कर दिया तो फिर आप उस गोल को बराबरी पर लाएंगे कैसे? तो जो केवल डिफेंड में खेलते हैं हो सकता है कि वो हारे न, लेकिन मुश्किल ये होती है उनके साथ कि वो जीत भी नहीं पाते, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन में आप इस तरह के थोड़े से रिस्क लें। दोस्तों मैंने ये आधार की बात अभी आपसे कही है, अभी मेरे पास समय उतना नहीं है, आगे चल करके कभी मैं इन पांचों आधारों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ले लेकर के आप सबसे बात करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से, ताकि आपके अंदर ये सारे तथ्य समा सके और ये तथ्य आपको प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में मदद कर सके। तो दोस्तों आज के विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और अबू होरेरा बांसवाड़ी बिहार से, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।